यह सम्य ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है जो पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में लिखी थी। मूल ग्रंथ जो गोमट सार है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा हुआ, उसकी ये संस्कृत टीका का भाषांतर है और उसमें से अभी जो हिंदी भाषांतर हुआ है उस पुस्तक के आधार से अभी अभी हमने वे 20 प्ररूपणा के ऊपर यहाँ 30 लेक्चर हुए थे, उसमें से अभी हम आज योग मार्गणा के ऊपर कुछ बात देखेंगे। वैसे वहां तो 20 ही प्ररूपणाओं को यहाँ सिखाया गया था। जीव की जो 20 प्ररूपणाएं हैं वो कौन सी है उसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं आचार्य कहते हैं कि मैं 20 प्ररूपणा कहूंगा। ये प्ररूपणा क्या होती है? तो प्ररूपणा यानी वर्णन। जीव के बारे में 20 प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। हमें अपना स्वरूप पहचानना है, इसीलिए हम इकट्ठे हुए ना, तो अपना स्वरूप पहचानना है। तो शुद्ध आत्मा की चर्चा तो समय सारादि ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में तो होती ही है, परंतु यहाँ संयोगों की अपेक्षा, पर्यायों की अपेक्षा जीव का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जीव को इन संयोगों की अपेक्षा पहले पहचान कर फिर वो संयोगों से और कर्मों से कैसे भिन्न है उसको नक्की करना है। इसलिए यहाँ 20 प्ररूपणाओं की चर्चा ये जीव कांड में की है। ये जो 20 प्ररूपणाएं हैं उसके नाम हमने देखे थे कि ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक तो है गुणस्थान और दूसरा है मार्गणास्थान, यानी 20 अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ बताए जाएंगे जीव के बारे में। कौन से दो भेद किए हमने अभी? गुणस्थान और मार्गणास्थान। तो गुणस्थान, तो आप ये गुणस्थान नाम तो सुना होगा ना। गुणस्थान यानी वो श्रद्धा और चारित्र गुण के पर्यायों की अपेक्षा जीव के जो विविध पर्याय बताई है, गुणस्थान यानी वहां पर्यायों के अलग अलग स्थान है। जैसे 1 से 14 गुणस्थान आपने बहुत बार सुना होगा, तो गुणस्थानों से तो हम परिचित है, परंतु ये मार्गणास्थान क्या होते हैं समय सार हम पढ़ते हैं, वहां तो आचार्य कहते हैं मैं गुणस्थान नहीं हूं, मैं मार्गणास्थान नहीं हूं, मैं अध्यात्म स्थान नहीं हूं, मैं वर्ग नहीं वर्गणा नहीं, ये ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट तो बताते हैं। वो क्या है वो पता नहीं, पर मैं उस रूप नहीं हूं। तो हमें जिस संबंधी पता नहीं है उस रूप मैं हूं या नहीं हूं ये कैसे कह सकते हैं? तो पहले यहां मार्गणा स्थान क्या है और वो जीव का कैसे कैसे बनती है, तो ये बात यहां विस्तार से समझाएंगे हम। थोड़ा देखते हैं क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ। मार्गणा किसको कहना? मार्गणा यानी खोज, अन्वेषण। हमें जीव कौन है, कहाँ है, क्या है पता नहीं ना। स्वयं जीव को ये प्रश्न है कि जीव कौन है, कहाँ है भी या नहीं है, क्योंकि शरीर ही मैं हूं मान लिया उसने, और आत्मा है कि नहीं आप कहते तो होगा, किसमें होगा? मेरे अंदर होगा, यानी मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा नाम का कोई पदार्थ होगा, ऐसी इस जीव की मान्यता है। हम तो यहाँ स्वाध्यायी ऐसे कोई मानने वाले नहीं है, परंतु सामान्य जीवों की यही बात होती है। तो यहाँ मार्गणा स्थानों में ने जीवों को हमें, ये जो संसारी जीव है मुख्यतः, तो उनको हमें पहचानना है, खोजना है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मार्गणा जो अलग अलग है, 14 मार्गणाएं हैं, परंतु मार्गणा स्थान जब कहते हैं, 20 प्ररूपणा हमने देखी ना, तो 20 प्ररूपणा में एक तो है गुणस्थान, फिर जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये अन्य प्ररूपणाएं हैं, और 14 मार्गणाएं हैं। कौन कौन सी है 14 मार्गणा? हाँ बहन, आपको याद है ना मार्गणा के नाम? याद है ना आपको? हाँ गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन सम्यक्त्व संगी लेशा भव्य आहार ये सभी क्या है मार्गणा है। तो ये मार्गणाओं का यानी जो प्ररूपण यानी विस्तार से उसका निरूपण किया है। अब मार्गणा में क्या होता है ये जो हमने अभी 14 अलग अलग नाम देखे हैं गति, तो गति की अपेक्षा संसारी जीवों का यहाँ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण विभाजन किया जाएगा। तो सभी संसारी जीव चार गतियों में पाए जाते हैं। तो गति की अपेक्षा अगर हम उनको विभाजित करेंगे तो चार ग्रुप होते हैं। तो ये गति मार्गणा की अपेक्षा जीव चार अलग अलग है, कौन से, देव गति है, नरक गति है, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। सिद्धों को यहां नहीं लिए क्योंकि वो गति से पार हो गए, पंचम गति में पहुंच गए। यहां तो मुख्यतः संसारी जीवों की ही बात है। तो जैसे हम सभी मनुष्य है, परंतु हम लौकिक की बात करते हैं कि हम देश के अनुसार अगर उनका विभाजन करना है तो कोई अमेरिकन है, कोई भारतीय है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, तो ये देश की अपेक्षा अलग अलग ग्रुप होगी। अभी उन्हीं सबको हमको व्यवसाय की अपेक्षा उनका विभाजन करना है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई कारागीर है, कोई और अन्य अन्य जो व्यवसाय करने वाले, या कोई कोई भी व्यवसाय नहीं करने वाले। तो जब अपेक्षा बदलती है तो अमेरिकन, इंडियन, जापानी, चाइनीज, जो कोई डॉक्टर है वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे, सभी के इंजीनियर अलग ग्रुप में होंगे। पहले ग्रुप का अभी वो उससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया बदल गया है। मार्गणाओं में ऐसा ही है, जब हम गति की अपेक्षा बात करते हैं तो चार गति के अलग अलग जीव हो जाते हैं। यदि हम इंद्रियों की अपेक्षा उनको विभाजन करेंगे तो क्या होगा, यानी एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेन्द्रिय, ये पांच ग्रुप हो जाएंगे। तो सभी देव किस में आएंगे, पंचेन्द्रिय में, सभी नारकी और सभी मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, तो तिर्यंचों में बहुत वैरायटी है, एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के ये जो सारे तिर्यंच है वो इसमें विभाजित हो जाएगी, पांच ग्रुप्स में अलग अलग। यानी सभी चारों गति के, तीन गति के तो पंचेन्द्रिय ही है और तिर्यंच के पंचेन्द्रिय, इन सबको अभी मिलाकर हम कहेंगे ये सभी पंचेन्द्रिय जीव। इस तरह से ये जो मार्गणाएं हैं अलग अलग, जैसे गति है, इंद्रिय है, काय मार्गणा में कितने भेद होते हैं मालूम है आपको, छह काय हम कहते भी ना, षटकाय जीवों की रक्षा करना आदि आदि बातें हम देखते हैं। तो ये जो षटकाय है तो कौन से है षटकाय, पांच स्थावर काय और बाकी त्रस काय। अभी त्रस की बात आई थी ना पंडित जी के प्रवचन में, त्रस किसको कहना, द्विन्द्रिय से पंचेन्द्रिय। अभी जो एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय हमने तिर्यंचों के इतने विभाजन किए, अब द्विन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तिर्यंच और सभी देव नार के मनुष्य सभी किस में आ गए, त्रस में आ गए। और फिर स्थावर में एकेन्द्रिय के पांच भेद हो गए, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। इस तरह से जहां जो अपना क्राइटेरिया है, जिस मार्गणा की बात है उस मार्गणा में उसका विभाजन अलग अलग हो जाता है। इन सब मार्गणाओं की तो हमने विस्तार से चर्चा यहाँ की थी, अभी हम थोड़ा योग मार्गणा के बारे में देखेंगे क्योंकि अपना अभी समय कम है और किसी एक ही मार्गणा की बात यहाँ हो सकती है। तो ये योग क्या होता है, क्योंकि हमने तो बहुत योग के बारे में सुना भी है ना, ये योग क्या है पहले उसको देखते हैं। तो योग ये विकार है, विभाव है, क्या स्वभाव है, विभाव है ना, और उसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में, सात तत्वों की भाषा में उनको क्या कहेंगे, आश्रव कहेंगे। देखो आश्रव किसे कहते हैं मालूम है, हाँ, कर्मों के आने को। तो योग में क्या, हाँ, कर्म के आकर्षण की शक्ति को वो तो योग कहते हैं। हमने आश्रव पूछा, ये समय सार में भी बताया, किसको कहना आश्रव, हाँ, द्रव्याश्रय उसको नहीं कहा है, पीयूष जी 164-165 का था समय सार। जो कर्म आते हैं ना आश्रवण कहते हैं, उसका जो कारण है उस कारण को आश्रव कहा है।
नहीं समझे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, प्रमाद को वहां उसी में गर्भित कर दिया है, तो वहां क्या कहते हैं, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये आश्रव है। आश्रव ने कर्म के आने के कारण है, उस कारण को वहां आश्रव कहा है। हम तो बचपन में ऐसे सीखे ना, कर्म आते हैं वो आश्रव और खिरते हैं वो निर्जरा, परंतु वो आने का कारण क्या है, क्यों आते हैं, तो ये तो बाकी की हमें हम चर्चा नहीं करेंगे। मिथ्यात्व अविरति कषाय की अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अभी तो मुख्यतः आज हमारी योग की चलेगी यहाँ पर। ये योग क्या है, होता क्यों है, यदि विभाव है तो क्यों होता है, और अयोगी को क्यों नहीं होता है, कोई उत्तर दे पाएगा? जिसने नहीं सुना है थोड़ा ट्राई करेंगे ना, ये योग होता क्यों है, किस कारण होता है, क्योंकि मिथ्यात्व क्यों होता है? अभी हमें तो निमित्त की भाषा में बोलना है। होता है जीव का, जीव के अपने स्वयं के कारण से वो उसका अपराध है, परंतु जब कर्णान योग पढ़ते हैं तो हम यहाँ निमित्त को वहां बताया जाता है, उसकी मुख्यता होती है, तो हम कहेंगे पुराना जो मिथ्यात्व कर्म का उदय है वो कारण है, और यहाँ जीव का जो भाव है वो नैमित्तिक है, वो उसका कार्य है। ऐसे ही हम अविरति में देखते हैं, कषाय में भी देखते हैं कि पुराने चारित्र मुनि का उदय है और यहाँ जीव का जो परिणाम है वो कार्य है, और चारित्र मुनि का उदय है वो कारण है। अब योग में किसको कारण कहना, योग जो है वो क्या है, मन वचन काय की चंचलता, कारण क्या है उसमें, मन वचन काय ये तीनों क्या है, जड़ है, तो उसकी चंचलता से कर्म क्यों आ रहे, आत्म प्रदेशों का कंपन क्यों होता है, जो सहयोगी का नहीं, सहयोगी का होता है और अयोगी का नहीं होता, सिद्धों का नहीं होता क्यों नहीं होता, और सहयोगी का होता है वो क्यों होता है, जैसे पहले गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जाता है, इसलिए वहां कर्म और नो कर्म यानी शरीर दोनों ही के परमाणु यानी वो परिणमित होते हैं उस कर्म रूप और नो कर्म रूप, यानी हमारी भाषा में उसके आकर्षण होता है, खींचते हैं, ऐसा कहेंगे ना कहने के लिए, यानी जो कारमाण वर्गणा है वो कर्म रूप होती है, क्यों होती है, तो हम कहेंगे वो जीव के योग के कारण, और ये जो नौ कर्म यानी औदारिक शरीर के परमाणु जो है, कौन सी आहार वर्गणा के परमाणु औदारिक शरीर रूप से होते हैं, तो ये औदारिक शरीर के जो परमाणु है ना आहार वर्गणा के, पूरे लोक में पड़े हैं, वैकृत के भी पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, तो हम आप औदारिक शरीर के परमाणु क्यों ग्रहण कर रहे हैं, और जो देवनार की वो वैकृत जाति के परमाणु क्यों ग्रहण कर रहे हैं, उनको वैकृत योग है और हमें औदारिक योग है, ऐसा क्यों? हाँ बोलो भाई, क्योंकि कोई तो निमित्त होगा, यहाँ विभाव रूप परिणमन है तो वहां निमित्त पाया जाता है, निमित्त से कार्य होता है, ये बात यहाँ नहीं चल रही, परंतु जहां जहां विभाव है वहां उसका निमित्त भी पाया जाता है, तो मनोवचन काय का अवलंबन तो बाद में जीव लेता है, परंतु अयोगी क्यों नहीं लेते और सहयोगी क्यों लेते हैं। हाँ बोलो, आपका कोई कौन, हाँ कौन सा नाम था, हाँ कौन सा वैक्रेक, हाँ शरीर नाम कर्म का, देखो ये योग होते क्यों है, तो शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। कितने शरीर नाम कर्म है, पांच प्रकार के शरीर नाम कर्म है, कौन कौन से, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकृत शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कारवाण शरीर नाम कर्म। अभी मनुष्यों को कौन सा शरीर है, अभी औदारिक है, तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय चल रहा है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो औदारिक जाति के परमाणु का ग्रहण कर रहा है। देखो ये जो शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है, ये गुरुदेव के प्रवचन में है, प्रवचन प्रसाद में पंचाशिकाय के जो प्रवचन है उसमें ये बात है, जो बड़े बड़े विद्वानों को मालूम नहीं, कर्णानियोग के विद्वानों को भी पता नहीं, वो बात एकाध वाक्य में, गुरुदेव की ऐसी विशेषता है, एकाध वाक्य में कर्णानियोग का महान सिद्धांत बताते, शांति भाई, हमारे पास तो प्रत्येक पुस्तक के पीछे हमने लिख के रखे करणान योग के उद्धरण, यानी हर पुस्तक में तो 25-30 के 50 तक के उद्धरण उनके है, और ऐसे पुस्तकें भी 50 के ऊपर हो गई अभी हमारी। ये सब हमने अलग निकाल के रखे, ये पाताल के संबंध में है उनके, ये अभी नियमसार में भी ये बातें आई है, बहुत सारे जो यानी इतनी सूक्ष्म बातें वो सहज एकाद वाक्य में बता दें। ऐसा नहीं कि उनका अभ्यास बहुत था, दो बार तो उन्होंने धवला पर प्रवचन दिए थे, मगर उस टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो लोगों को लगता है कि आपने ये कहां से लाए, नया विषय क्यों चलाते हैं, आप गुरुदेव से अपने को बहुत बड़ा मानते हैं क्या, ऐसा भी कहने वाले मिले हमको। तो तीर्थंकर भगवान की वाणी कितने अनुयोग वहां होते, चारों अनुयोग, और सबका है ना, सबका सार तो वितरकता है, उसमें से वितरकता कैसे निकालनी ये हमें होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। किसी अनुयोग का निषेध नहीं, उसमें अपनी बुद्धि चले नहीं चले, अपने रुचि है नहीं है वो बात अलग है, परंतु अपनी रुचि के अनुसार हम अगर भगवान की वाणी का निषेध करते हैं तो हम सर्वज्ञ का निषेध करते हैं, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध करते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही जानना है तो सब कुछ जानता है वो। ये सारी बातें जो है वो भी आत्मा ने अपने स्वभाव से ही जानी है, और ये सभी श्रुत ज्ञानियों ने हमारे लिए लिख के रखी। पंडित टोडरमल जी की तो इतनी भावना थी कि जनसामान्य सब इसको जाने, इसलिए उन्होंने इसमें से गणित का पार्ट अलग निकाला, क्योंकि वो गणित देख देख के लोग घबराते थे, और नहीं बाबा ये ग्रंथ अपने बस की बात नहीं, इसलिए छोड़ देते थे। हम भी शुरू में पढ़ने लगे तो 20-25 पेज के बाद ऐसा लगता है ये अपने बस की बात नहीं है, परंतु ऐसे आगे पढ़ते कुछ ना कुछ बातें अपने जरूर समझ में आए, ऐसी बात है इसे। तो यहां जो योग के बारे में ये जो क्या है कि शरीर नाम कर्म के उदय में तो सयोगी को है और अयोगी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंत समय तक है, और 14वें गुणस्थान में उसका उदय नहीं है, उसका क्षय होगा तो जब अंत में होगा उसका, परंतु वो सत्ता में पड़ा है परंतु उदय रुक गया है। तेजस शरीर नाम कर्म का उदय, कारवान शरीर नाम कर्म का उदय 13वें के अंत समय में रुक जाता है। तो सयोग केवली के तेजस शरीर का भी ग्रहण है, कारमाणे ने वहां साता वेदनीय का भी बंध है, परंतु जो वो अयोगी होते हैं तो उनको ना ही शरीर के परमाणुओं का ग्रहण है, परम औदारिक शरीर का जो ग्रहण चल रहा था वो भी रुक जाता है, और कारमाण और तेजस शरीर का ग्रहण भी रुक जाता है, क्योंकि उनका उदय मिट गया। तो यहां जब हम योग की बात करते हैं तो योग ये जो आत्मा का विभाव है स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो कंपन होना ये विभाव रूप अवस्था है। सिद्ध भगवान तो अकंप अवस्था हो जाती है, अयोगी अवस्था हो जाती है, निश्चल हो जाते हैं, यानी प्रदेशों की चंचलता मिट जाती है। तो ये चंचलता जो होती है तो उसके क्यों होती है उसका हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन कि ये योग क्या है और क्यों होता है, और फिर उसके कितने भेद प्रभेद है उसकी बात हम यहां देखते हैं। योग मार्गणा ने ये बातें लिखी है, उसका क्या कारण है। देखो यहां कहते हैं कि संसारी जीव जो है उनके जो ज्ञानावरणिक कर्म और अन्य जो नो कर्म औदारिक आदि जो नो कर्म किसको कहते हैं, किंचित यानी जो शरीर मन वाणी आदि के जो परमाणु है श्वासोच्छ्वास आदि के, तो उसको कहते हैं नो कर्म के परमाणु, एक कर्म के और एक नो कर्म के। तो इनका जो ग्रहण होता है ना, ये जो पुद्गल स्कंध है उस जाति से, उसको कर्म और नो कर्म यानी शरीर रूप से परिणमाया जाता है। ये क्यों होता है, तो ये योग के कारण होता है, यानी ये जो पुराने नाम कर्म के उदय में जीव में ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि वो कर्म और नो कर्म का ग्रहण करे, यानी वहां जो मनोवर्गणा वचनी वर्गणा और काय वर्गणा है उनका अवलंबन जीव स्वयं लेता है, परंतु ये अवलंबन लेने की या चंचलता होने की जो शक्ति है उसको कहते हैं भाव योग। कर्म को और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, उस शक्ति को कहेंगे भाव योग, और वो एक्चुअल जो कंपन है वहां उसको कहेंगे द्रव्य योग। ये द्रव्य योग और भाव योग दोनों आत्मा में है, ये मन वचन का तो पुद्गल है, जड़ है, उसके कारण कर्म कैसे आएंगे, वो मनो के मन के परमाणु, वचन के परमाणु और शरीर के परमाणु आते क्यों हैं? तो जीव के चंचलपना के कारण आते हैं। तो ये जो प्रदेशों की चंचलता है उसको योग कहते हैं, और आत्मा के भावों की चंचलता है उसको कषाय कहते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर लेशा कहते हैं। फिर से, जीव के भावों की जो चंचलता है उसको क्या कहेंगे? कषाय। और प्रदेशों की चंचलता है उसको कहेंगे योग, और योग प्लस कषाय इसको कहेंगे लेशा। ख्याल है? अब ये जो योग है वो तीन प्रकार के हैं, मूल में मुख्य भेद मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो ये मनोयोग क्या है और कितने प्रकार के हैं? तो मनोयोग होगा किसको? पहले में पहले ये देखेंगे, संगीत पंचेंद्रियों को ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका वैसा वो कर्म का क्षोभम चल रहा है, उसको मन संबंधी जो ज्ञान का क्षोभम चल रहा है उसके वैसे ही सभी। देखो ये जो नाम कर्म है, जो ज्ञानावरण कर्म है, ये सब आपस में पूरक होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ हो जाए और वहां मन की रचना ही न हो जाए। वैसे ही वहां योग भी वैसे होते हैं, उसकी रचना भी वैसी होती है, द्रव्य मन की रचना भी होती है और उसमें वैसा क्षोभम भी पाया जाता है। तो संगी पंचेंद्रिय जीवों को मनोयोग होता। वचन योग किसके होता है? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी, इन सबको वचन योग होता है। ये उनके भाषा होती है। हम बहुत बार यहां कहते हैं कि द्विंद्रिय जीवों को, तीन्द्रिय जीवों को, चतुरिंद्रिय जीवों को, असंगी को छोड़ो, अभी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय को वचन योग है, यानी भाषा है। इनके कर्णेन्द्रिय है कि नहीं है? चार इंद्रिय वाले तक कर्णेन्द्रिय नहीं है। कर्णेन्द्रिय किसके है? पंचेन्द्रिय जीवों को है ना, श्रोत्रेन्द्रिय या कर्णेन्द्रिय। तो वो क्या है करते हैं? बोलते हैं, सुनते नहीं है। हमारे जैसे हम मंदिर में क्या करते हैं? भगवान को सुनाते हैं, परंतु भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनते नहीं है। तो हमारी वैसी अवस्था हो जाएगी विकलेन्द्रिय जैसे। तो यहां क्या कहते हैं? देखो ये वहां लिखे है योग के भेद, बोर्ड पर लिखे ना, योग है मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये चार चार प्रकार बताए हैं। मनोयोग के भी चार प्रकार हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय यानी दोनों, सत्य असत्य दोनों को मिलकर उभय कहते हैं, और अनुभय यानी दोनों भी नहीं है। पदार्थों में ही ऐसे भेद पड़े थे, सत्य पदार्थ, असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ और अनुभय पदार्थ। जैसे पदार्थों में कैसे सत्य असत्य हो सकता है? तो उसको जानना मन के द्वारा वो मनोयोग में चला जाएगा, और ऐसे सत्य असत्य पदार्थों को कहने के प्रति जो प्रवृत्ति होती है उसको वचन योग में डालेंगे। तो सत्य पदार्थ है ने क्या? जैसे जो पानी है, जल है, उसको जल जानना या कहना वो सत्य हो जाएगा। और असत्य ने मृग जल है, क्या कहते आप? मृग जल समझते ना, तो उसको हम जल कहेंगे। तो उस जल से ना अपनी तृषा बूझती है और ना ही नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो उसको हम असत्य पदार्थ कहेंगे। उभय यानी क्या और अनुभय यानी क्या? दोनों, क्योंकि जो हम घट है या कमंडल है, दोनों से जल धारण होता है, परंतु कमंडल को घट कह देना, या दोनों भी नहीं है। इस तरह से पदार्थों के यहां हमने इसकी डिटेल में बात भी की थी, ये कैसे होते हैं, ये पदार्थों में ही कैसा हो जाता है। देखो यहां कमंडल में घट का ज्ञान होना उसको उभय कहा था, और अनुभय में ज्ञान में तो आया है परंतु उसका निर्णय नहीं है, उसको अनुभय में लिया था। सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, इस तरह से ये चार चार भेद उसके उसके डिटेल में अभी हमको नहीं जाना है। हम अभी काय योग की बातें यहां करेंगे। हाँ, वो उभय आता है, क्योंकि क्या है कि वो पानी भरने की क्रिया तो दोनों में होती है, यानी उसकी अपेक्षा से उनमें समानता है, इसलिए उसको उभय पदार्थ उभय कहते हैं। घट जैसा आकार नहीं है इसलिए वो तो असत्य हुआ, परंतु पानी भरने का कार्य वहां होता है इसलिए सत्य। तो सत्य और असत्य मिलकर वो उभय हो जाता है। अब ये काय योग की हम यहाँ चर्चा करेंगे। काय योग में सात प्रकार है। एक है औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रेयिक काय योग, वैक्रेयिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कर्माण काय योग। अभी अभी हमने देखा कि जिसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है उसको औदारिक काय योग होता है। वो किसके होता है? तो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। ये तो हमें मालूम है औदारिक काय योग वाले कौन है? मनुष्य और तिर्यंच। तो कितने इंद्रिय वालों को यह औदारिक काय योग होगा? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक। मनुष्य और तिर्यंच की बात है ना, तिर्यंचों में तो सभी वैरायटी है, मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, तो उनमें औदारिक काय योग होता है। परंतु उसमें एक विशेषता है, ये किसके होगी? तो पर्याप्तों को होगी। पर्याप्ति हमने छह पर्याप्ति यहां देखी थी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। उसमें से दूसरी जो शरीर पर्याप्ति है वो जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक इस जीव को मिश्र कायोग पाया जाता है। तो कहीं से जीव मरकर आया है यहां मनुष्य तिर्यंच में, तो शुरू में उसके औदारिक मिश्र कायोग पाया जाता है और जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो औदारिक कायोग हो जाता है। जब छह पर्याप्ति पूरी होती है, अभी तीन में से कोई भी योग पलटता रहेगा, कौन सा? मनोयोग, वचन योग और काय योग। संगी पंचेंद्रिय जीवों में तीनों में से पलटता रहता है, ऐसा एक ही योग कायम रहा ऐसा नहीं होता। एक एक छोटे अंतर मुहूर्त में औदारिक काय योग से मनोयोग, मनोयोग से वचन योग, फिर ऐसा काय योग, वचन योग, मनोयोग, हर अंतर मुहूर्त में वो पलटते पलटते रहता है। उसका कार्य तो आप कहेंगे हम बोलते भी है, शरीर की क्रिया भी कर रहे हैं, सोचते भी है कि नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सभी एक साथ कर रहे हैं, परंतु एक साथ तीनों योगों का कार्य नहीं चलता। एक अंतर मुहूर्त तक कार्य चलेगा फिर वो पलटेगा। तो तीनों कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं, तो हम वो सर्कस में देखते हैं ना, ये तो टीवी पर देखते होंगे, वो बॉल ऐसे उछल, छह छह बॉल है और हाथ दो ही है, एक बॉल ऊपर जाता है और वो नीचे आता है तब तक ये और दो बॉल ऊपर उठता है। तो ये इतना फास्ट होता है कि सभी ये छह छह बॉल भी वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और हाथ तो इसके दो ही है। इसी तरह से योगों का पलटना बहुत फास्ट होता है, परंतु जो प्रवृत्ति होती है वो चलती रहती है। उसमें संस्कार के बल से, जैसे कुमार का चाक है, उसने घुमा दिया और हाथ तो निकल दिया, दूसरा कार्य करने लगा और वो चाक तो घूमता रहता है। हमने बटन ऑफ किया तो भी पंखा घूमता है, तो इसको कहते हैं वो संस्कार के। तो योगों के जो है, एक बार वो कार्य शुरू हुआ, प्रवृत्ति शुरू हुई और फिर योग पलट गया, फिर भी वो प्रवृत्ति जो चली है वो संस्कार के बल से कुछ समय तक चलती है और उतने काल में दूसरे योग का प्रवर्तन होता है और फिर दोबारा वो ओरिजिनल योग में लौट आता है। ये बहुत छोटा काल है, ये जो अंतर्मूर्त भी कहते हैं, परंतु ये बहुत अत्यंत छोटा अंतर्मूर्त है, उसमें योगों का पलटना बहुत फास्ट चलता है। इसलिए हमें लगता है हम बोलते भी है, सोचते भी है, हाथ से कार्य भी कर रहे हैं, अन्य भी कार्य कर रहे हैं। तो ये जो पर्याप्त जीवों को होगा, मनोयोग भी पर्याप्तों को होगा, क्योंकि जब तक मन पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो मनोयोग नहीं होगा, वचन पर्याप्ति पूरी नहीं है तो वचन योग नहीं होगा। इसलिए जब छह पर्याप्ति पूरी होती है तब जाके उसके वचन योग, मनोयोग और शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद काय योग शुरू हो जाता है। मनुष्य तिर्यंचों में तो औदारिक समझना, यानी पहले औदारिक मिश्र है और फिर औदारिक काय योग है। और देव और नारकियों में क्या होगा? पहले क्या होगा? वैक्रेयिक मिश्र पहले होगा और बाद में वैक्रेयिक काय योग होगा। ये पहले तो हम स्थूल रूप से देखेंगे, फिर वो गुणस्थानों में भी उसकी चर्चा करेंगे। अभी आहारक और आहारक का योग, ये आहारक का योग क्या होता है और वो किसके होता है, पता है किसी को? ये आहारक शरीर आपने नाम सुना होगा, आहारक शरीर होता है किसके होता है? मुनियों के होता है। कौन से मुनि के होता है? छठे गुणस्थान वर्ती, क्योंकि सातवीं तो अप्रमत्त अवस्था है। छठे गुणस्थान वर्ती जीवों को यदि तत्व में कोई उनके ऐसा प्रश्न उत्पन्न होए, ये सात तत्वों में नहीं हो, प्रयोजनभूत तत्वों में तो वो निशंक है। और प्रयोजनभूत कहने से भी एक ही करना योग का कोई होगा। कभी कभी क्या होता है, उपदेश की अनेक धाराएं चली आती है तो उसमें से निश्चित करना है, तो ऐसी अवस्था में आहारक शरीर के साथ वो तीर्थन करके वहां चले जाते हैं, और वहां जाते उनके वो प्रश्न का समाधान हो जाता है और एक अंतर्मुख में वापस लौटते हैं। छठे गुणस्थान का काल छोटा एक है अंतर्मुख, उसके अंदर अंदर ये वहां आहारक शरीर का बनना, वहां जाना, वापस आना मूल शरीर में, ये सब कार्य उस छठे गुणस्थान के अंतर्मुहूर्त से भी छोटे अंतर्मुहूर्त काल में हो जाता है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में तो आहारक का योग वगैरह होते ही नहीं है, छठे में ही होते हैं। प्रकृति बनती है सातवें में आठवें में, आपको पता होगा। आहारक शरीर नाम कर्म जो है उसका बंध कब होता है? सातवें आठवें में, और उसका उदय कब होता है? छठे में, क्योंकि उसका उपयोग कौन करेगा? तो छठे गुणस्थान जो प्रमाद अवस्था है, जहां उनको कोई शंका है, जाने का विकल्प है कि कहीं मेरु पर्वत की वंदना करनी है, तो वो आहार शरीर के साथ वहां चले जाए। आपका प्रश्न ऐसा है कि आहार शरीर में आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है? देखो, वैकिरेक शरीर हो या आहार शरीर हो, मूल शरीर और वो नया शरीर कितना भी दूर क्यों न चला जाए, उनमें आत्म प्रदेशों की कंटिन्यूएशन है, ये कभी लिंक है उनमें। जैसे आप लेसर बीम छोड़ते हैं तो उसमें कैसे एक थिन लाइन होगी, तो वैसे ये मूल शरीर में भी आत्म प्रदेश है और उस शरीर में भी है, क्योंकि आत्मा तो अखंड है, उसके दो टुकड़े कभी नहीं होते। और उसमें भी वो काय योग, मनोयोग, वचन योग उससे साथ भी है, आहार काय योग के साथ भी ये तीनों योग होते हैं वहां। तो वो जाना, यहाँ आना, ये सब कार्य इतने छोटे समय में होते हैं, परंतु ये किसके होते? तो आहारक काय योग, जिसने पहले आहारक शरीर नाम कर्म बांधा है, ऐसे मुनिराजों के ये होता है। मेरा प्रश्न है, कुनकुन आचार्य गए थे विदेह क्षेत्र में, कौन से शरीर के साथ गए थे? औदारिक के आहारक, औदारिक क्यों? हाँ, इसका काल तो अंतर्मुहूर्त है, और वे तो वहां आठ दिन तक रहे थे, यानी वो सदैव विदेह गए। लोगों को प्रश्न आता है, औदारिक शरीर के साथ गए कि आहारक शरीर के साथ? तो हमें तो निर्णय अपने आगम के आधार से होना चाहिए, क्योंकि आहारक शरीर का काल तो अंतर्मुहूर्त है, और ये तो आठ दिन वहां रहे थे। ख्याल है? तो ये जो अभी हमने देखा आहारक शरीर, तो जब आहारक शरीर शुरू होता है तो उसमें भी छह पर्याप्ति होती है। तो आहारक शरीर संबंधी दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक आहारक मिश्र का योग होता है। अब ये जीव आहारक जाति के परमाणुओं को ग्रहण करने आए, तो उसके बाद आहारक का योग होगा। पहले कौन सा है? आहारक मिश्र, उसके बाद आहारक का योग। अभी वह जीव औदारिक शरीर के परमाणु नहीं ले रहा, उतने काल के लिए आहारक जाति के परमाणु ग्रहण करके आहारक शरीर की रचना होती है। आपने सुना ना, मस्तक से एक हाथ सफेद पुरुषाकार पुतला निकलता है, उसमें सहन यानी हड्डी वगैरह कुछ नहीं होती, सप्त धातु से रहित होता है, एक हाथ प्रमाण होता है, सफेद होता है पुरुषाकार। एक छोटे अंतर्मुहूर्त में उसकी रचना होती है, आहारक मिश्र काल है, और फिर वो बाद में वहां गमन होता है और वापस आ जाता है। ना क्या होगा, तो जब भी आप करेंगे तो पता चलेगा आपको, जब किसी भाव में करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो कैसा है, क्या होता है, ये तो हमें आगम चक्षु लगाएंगे तो पता चलता है, आगम चक्षु से सब कुछ पता चलता है। आपके पास है कि नहीं है आगम चक्षु? है कि नहीं है आगम? है कि नहीं है? तो ये बाकी चश्मे तो हम बहुत फैंसी और इम्पोर्टेड सब लेते हैं, और जब आगम चक्षु लेने की बात है, आपके घर में चार जन है और चार को चश्मा है, तो सब में एक चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता। तो हर एक का अपना, अरे एक एक के दो दो होते हैं, एक काम आएगा कभी, हाँ फूटेगा तो क्या करेगा। परंतु आगम चक्षु कितने लेते हैं हम? एक कितने? दो चार फैमिली में भी एक चले, तेरा होने के बाद मैं पढ़ो। सुबह न्यूज़पेपर आता है तो पहले सबको चाहिए ना, ये तेरा बाजू वाले को नहीं कहते, तेरा हो जाएगा तो दोपहर में पढ़ूंगा मैं। हर एक को अपना अपना चाहिए, और स्वाध्याय की इतनी रुचि है कि कि ग्रंथ तो नहीं आप पढ़ लेना, उसमें तो इतनी शांति और वितरागता है, इसमें आप पढ़ लेना फिर मैं ले लूंगा। ऐसा नहीं कहते कि हमारे घर में हम दो जने तो दोनों के ग्रंथ अलग अलग से, ऐसा लगता नहीं अंदर से अपने। तो ये आगम चक्षु फ्री में मिलते हैं, मग फिर भी लेने को नहीं तैयार नहीं कोई। देखो हम तो हम इसमें जिनवानी की स्तुति में तो कहते हैं क्या लोकालोक का पता चलता है, ये आगम पढ़ने से लोकालोक का पता चलता है, लोकालोक को जानते हैं, इसीलिए जिनवानी के ढोक भी देते हैं, फिर भी उसको खोल के पढ़ने का मन नहीं होता हमारा, ये बात। तो ये आहारक शरीर कैसे होता है, क्या होता है, उसमें कितना सहनन होता है, कितनी क्या बातें होती है, वो कौन से नाम कर्म के उदय होते हैं, वो बहुत सारी डिटेल बातें उसमें। हमने तो यहाँ समय प्रबद्ध कितना होता है, उसमें परमाणु कितनी होते हैं, इसकी भी संख्या गिनाई थी कि नहीं, उसका हिसाब भी किया था। तो अभी तो हमने ये सात प्रकार, अभी कारमान रहेगी ना, तो ये कारमान का योग कब होता है और किसके होता है इसको भी देखेंगे। कारमान का योग यानी मात्र कर्म का ग्रहण है, वहां कारमान शरीर नाम कर्म का ही उदय है, तेजस का भी है पर उसकी चर्चा यहां नहीं है। तो कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है और अन्य किसी नाम यानी शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, ऐसी अवस्था कब होती है, विग्रह गति में। ये विग्रह गति क्या होती है, जीव एक गति से मरकर अन्य गति में गमन करता है, तो बीच की अवस्था। परंतु बीच की अवस्था में भी एक विशेषता है, मोड़ वाली गति नहीं चलेगी, सीधी जाएगी तो उसमें कारमान का योग नहीं होगा, तिरछी नहीं, एक मोड़ लेकर जाएगा या दो मोड़ या तीन मोड़, तो मोड़ के पहले पहले कारमान का योग होता है, जो एक ही समय में जाता है। देखो कैसे मरने के बाद जीव का गमन जो है वो सीधी लाइन में होता है, ये बच्चा है ना वो उसने सुना नहीं होगा, या पूर्व में पश्चिम में दक्षिण में या उत्तर में या ऊपर या नीचे। मान लेते हैं किसी का यहां मरण हुआ और उसको इस पोजीशन में जन्म लेना, तो ऐसा तिरछा गमन नहीं होगा, कैसा होगा, सीधा जाएगा फिर राइट एंगल में टर्न लेके नीचे आएगा। तो इसके लिए एक मोड़ लिया, एक टर्न लिया, तो ये टर्न के पहले उसके कारमान का योग है और दूसरे समय में पहुंच जाता है वहां तो मिश्र का योग चालू हो जाता है। तो ये कारमान का योग या तो एक समय में होगा, जो दो मोड़ लेके जाते हैं उसके दो समय लगेंगे कारमान का योग के, और सूक्ष्म एकेंद्रियों में तीन मोड़ भी लेते हैं तो वहां तीन समय तक कारमान का योग पाया जाता है। सभी जीवों को तीन समय नहीं लगते, किसी को एक भी टर्न नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वहां नीचे है और ऊपर इसी पोजीशन में उसका जन्म लेना है। हम यहां मरे और ऊपर सीधे स्वर्ग में वहीं उसी विमान में वहीं पर बिल्कुल सीधी लाइन में, थोड़ा भी ऐसा नहीं, तो वो रुजु गति कहते हैं उसको, बिना विग्रह के बिना मोड़ वाली गति। तो बिना मोड़ वाली गति में कारमान का योग नहीं होता, यानी यहां भी वो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है मरण के समय, और नेक्स्ट समय में वैक्रिक अभी देह हुआ ना, तो वैक्रिक जाति के परमाणु ग्रहण करना शुरू किया उसने, बीच में कोई कारमान का योग नहीं है। तेजस का तो समय हर समय चल रहा है, तेजस शरीर के परमाणु का ग्रहण हर समय अनादि से लेकर संयोग केवलि के अंतिम समय तक हर समय चल रहा है। कर्म का ग्रहण भी अनादि से लेकर संयोग केवलि के अंतिम समय तक हर समय कर्म का भी ग्रहण चल रहा है, तेजस और कारमान का ग्रहण हर समय होता है। औदारिक या वैकिरिक शरीर का ग्रहण जिसके कारमान का योग होता है बीच में, उसके एक दो या तीन समय तक नहीं होता, उसके अलावा हर समय होता है। अब यहां जो हमने कारमान का योग देखा और कहां पर होता है वो पीछे वाले जानकार लोग बता देंगे, कारमान का योग और किसके होता है। हाँ, संयोग केवली के, जब केवली समुद्घात होता है तो उसके चार भेद है केवली समुद्घात के, दंड कपाट प्रतर और लोकपूरण। दंड यानी खंभे जैसे आत्म प्रदेश फैलते हैं चौदह राजू तक ऊपर बात वाले को छोड़कर, कपाट यानी वो फैले हुए हैं ऐसे, अभी हॉरिजॉन्टली ऐसे फैलते हैं लोकाकाश के एंड तक, बात वाले को छोड़कर, उसको कपाट कहते हैं। तीसरे पोजीशन में प्रतर में ऐसे आगे पीछे भी लोकाकाश तक फैलते, अंत तक फैलते हैं। और चौथे समय में पूरे लोक में, वात वलय सहित पूरे लोक में, उसको कहते हैं लोकपूरण। तो प्रतर, लोकपूरण और फिर वापस प्रतर, तीन समय तक संयोग केवली, जो केवली समुदाय करते हैं उनके तीन समय तक कारमण का योग पाया जाता है। ये जो कपाट नाम का दूसरा भेद है उसमें औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। ये बात हम कल फिर दोबारा दोहराएंगे सब, कहां कौन से होते हैं, कौन से गुणस्थान वाले हैं, कौन से गति वालों के होते हैं और वो कैसे कैसे पाए जाते हैं, इसकी बात हम कल करेंगे, क्योंकि अभी आज का अपना समय समाप्त हो गया है। इसकी बात को फिर दोहरा के फिर हम आगे बढ़ेंगे, योग की बातें और करेंगे। हमें तो कौन से गुणस्थान में कौन से योग होते हैं, कहाँ क्या होता है, वो सब देखना है। अभी हम यहीं रुकते हैं। बोलो चौबीसो भगवान।